हरे कृष्णा। तो आपने अभी प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना श्रीमद् भागवतम के पदन सकंद के 8वें अध्याय का 28वां श्लोक था। प्रभुपाद जी ने यह लेक्चर दिया था
जय राधा
कल रात मायापुर। और ये लेक्चर प्रभुपाद जी ने दिया था अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 8, 1974 मायापुर धाम में। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का जिसमें कुंती देवी जी है, आप जो हो सनातन समय हो और यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण
गोपी जाना
विराजमान है
परमात्मा
के रूप में। आप तो प्रभु जी कह रहे हैं कि
गोपी जाना वाला
और किसी का पक्ष नहीं लेते। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान किसी का पक्ष ले रहे हैं,
जय राधमा
कुंती देवी जी भी कह रहे हैं इस श्लोक में कि आप सबके साथ बिल्कुल समानता के साथ व्यवहार रखते हो।
जय राधमा
कह रहे हैं परम भगवान जो है
जब
किसी का पक्ष नहीं लेते, सबके साथ समानता से व्यवहार करते हैं। तो अगर हम ये सोचेंगे भगवान की का पक्ष ले रहे हैं
सो गाना ब्रज जाना रंजना।
और फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सूर्य का, जिस प्रकार
सो गाना ब्रज जाना रंजना
और शास्त्र में बादलों का भी उदाहरण दिया जाता है। तो इसी प्रकार
प्रभुपाद
समानता से उसकी रोशनी हर जगह प्राप्त होती है। उसी प्रकार हमें
जय रामा
सबके हम सर्वा भूते। ये श्लोक हमें भगवद गीता के 9वें अध्याय में प्राप्त करते हैं, प्राप्त होता है
जय रामा
सर्वभूते। देन आई एम इक्वल टू एवरीवन,
आई एम
नॉट इंडियन टू एनीवन। भगवान कहते हैं ये भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक में समो हम सर्वा भूते
करता हूँ।
किसके प्रति द्वेष नहीं, किसके प्रति मेरी ईर्ष्या नहीं, किसके प्रति क्रोध नहीं। पर आगे इस श्लोक में भगवान ये भी कहते हैं
जो
व्यक्ति मेरे शरणागत होता है मैं खास तो आप कहोगे
सोदानंदन ब्रज जननंदन सोदानंदन ब्रज जननंदन।
ब्रह्मा
ब्रह्मचारी
सबके पास समानता से व्यवहार करता है और तो भगवान कहते हैं किसके प्रति
जय राधमा धाम जब बिहारे।
तो जो मेरी शरण में आता है उसमें
जय राधमा धाम जब बिहारे।
तो प्रभुपाद जी इस विषय पर एक चर्चा करते
गोपी जाना वाला भाई
ये नहीं सोच रहे
भगवान
ये यहाँ प्रभा जी उदाहरण देते हैं सरकार का
सोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीन उन्नचारे जय से कृष्ण चेतन प्रभा नित्यानंद राधा कदि भक्त
बार बार पहले पांच में दो बार इस श्लोक का उपयोग किया था कि गौर इतना पांच भगवान की जब बच्चे आगे जाकर पापा जी
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद सिंहदेत राधा शिव सजि गौर भक्त
वेना। देवहूति ने अपने बेटे से पूछा था, बेटा ये बताओ किस प्रकार मुझे जन्म मृत्यु के संघर्ष से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ था माता के प्रश्न के साथ, और बेटे ने कहा कि
हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
बताओ
हरे हरे
किस प्रकार
हरे राम
हरे राम
हम राम हरे हरे।
और कौन साक्षी बनता है आप लोग जब प्रचार करते हो, खास करके आप देशों में प्रचार करो और उनसे भी चर्चा करो, आत्मा सनातन है और ध्यान कर हो रहा है।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हम राम हरे हरे।
अगर आपकी कोई दवाई नहीं ला सकते तो आप दवाई के पर ही
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
देवभूति का प्रश्न
हरे राम
हरे राम हम
राम हरे
राम। ये निर्णय किया जाएगा किसको किस प्रकार का ध्यान हम लोग प्राप्त हैं, और इसके उत्तर में भगवान शक्ति देव ने
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे।
हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे।
ये सब साक्षी बनते हैं।
जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा।
पर हर जगह
जय गौर अमिताय गौर अमिताय गौर अमिताय गौर अमिताय।
तो यहाँ इस श्लोक में भगवान
जय राधा पार्वती राधा पार्वती राधा। जय सीता राम लक्ष्मण राम जय सीता राम लक्ष्मण राम।
बनते हैं
हरि भा हरि भा हरे बाई
बा। गवाहियों को आप रिश्वत ली।
हरि बोल हरि बोल
हरि
बोल हरि बोल।
आज 25 तारीख अप्रैल के इस समय 9 बजे आप शाम को उन्होंने ये फिल्म देखी तो हर मिनट का हाँ हिसाब किताब रखा जा रहा है। अगर आप सोचते हो
नहीं 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 कोई साक्षी नहीं है,
मेरे घर में बड़ी दीवारें हैं, पर्दे हैं, कहाँ सूर्य का प्रभाव नहीं, चंद्रमा का प्रभाव नहीं। इस विषय पर प्रभा जी आगे कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूत नाम प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदार हरे के हृदय में विराजमान
परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हर कार्य के साक्षी बनते हैं।
भक्ति
कई बार लोग कहते हैं
भक्त बिंद की
इस बच्चे ने तो अभी जन्म दिया है
कि
इसी सजा क्यों प्राप्त हो ली।
राधा पर साथी
कई बार आप देखते हो कोई बच्चा पैदा होता है कुछ कमियों के साथ
हनुमान
तो लोग कहते हैं इसने तो कुछ अपराध किया भी नहीं
की
तो इसका सजा पहले क्यों भुगतनी पड़ रही है, क्यों प्राप्त हो रही है। तो इसका उत्तर बड़ा सरल है और इस विषय की चर्चा की गई आज के लेक्चर में कि भगवान परमात्मा और हम सब क्या है, हम सनातन है और कर्म के अनुसार हमें ध्येय प्राप्त होता है सुख दुख
भगवते।
तो अगर हम ये कहें कि अगर इस व्यक्ति को किसी प्रकार की सजा प्राप्त हो रही है और भगवान उसका विरोधी है, उसके प्रति द्वेष रख रहे हैं, ये गलत विचार है। हमें ये सोच समझ जाना चाहिए और इस विषय की चर्चा अनेक श्लोकों में की गई है कि भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, सबके सामने साथ बिल्कुल
हरे कृष्ण
के साथ व्यवहार होता है और भौतिक स्थिति में आप किसी को धोखा दे सकते हो पर आध्यात्मिक स्थिति में
जिन
परम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। और भगवान हर स्थान में उपस्थित हैं और सूर्य और चंद्रमा क्या भगवान के दो नेत्र आप भौतिक स्थिति में देखते हो कि आज कल ये बड़े बड़े एडवांस देश हैं अमेरिका रशिया उनके पास सैटेलाइट्स हैं जिनमें कैमराज हैं तो वो 80,000-90,000 की ऊंचाई से
FM
पूरे पृथ्वी पर क्या क्या हो रहा है हर चीज की तस्वीर खींच कर रखने आप अभी एक गूगल सर्च है।
आप सबने कल रात को ड्रामा देखा था
तो आपको पता लग जाएगा चाइना में
कैसे लगा आपको।
So I want to thank
director, dialogue writer, script writer,
and
Yogi Prabhu. मैं सोच रहा था कि ये ड्रामा हम अंग्रेजी में भी कर सकते हैं।
सूर के जाता है अब चेक
करते हैं। लेकिन है
हवाई जहाज में रखने
प्रीमियर नेक्स्ट ईयर इन माय एयरपोर्ट
के अंदर कोई बम वगैरह तो नहीं है। एक्सरे कराते हो सब
देख ना।
तो अगर भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक विज्ञानी
चैतन्य महाप्रभु जी थे
असंभव कार्य ड्रामा कर सकते हैं तो आप क्या
उनका
सूर्य चंद्रमा
एक भक्त था बुढ़ी मंता खान
कैसा
तो वो सारा खर्चा देता था।
ये सोचना
महाप्रभु जी के
देखेगा नहीं और हमें सजा नहीं भोगनी पड़ेगी।
सरस्वती ठाकुर जी ने भी
इस विषय का
ड्रामाज और एग्जीबिशन
आगे जाकर
म्यूजियम का आइडिया है
समाज में एक प्रकार के
सबसे पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने दिया था।
मेरा धर्म
प्रभुपाद जी ने इसको डेवलप किया।
प्रचार में जाते हो तो लोग
प्रभुपाद जी ने कई बार कहा था
यू
हैव ड्रामा ग्रुप
आपका धर्म
जस्ट टू संदेश आगे
तो असली धर्म का अर्थ क्या
ड्रामा ग्रुप को बड़े संभाल के चलाना पड़ता है तो उनमें गड़बड़ भी हो जाती है कई बार।
धर्म क्या है
थैंक यू वेरी मच
जिसके द्वारा
उनके साथ जो
भगवान के प्रति
भक्तों ने
श्रद्धा
अपना समय दिया रिहर्सल के लिए और
भौतिक
प्रैक्टिस के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो प्रभु जी कह रहे हैं कि आज भौतिक
बहुत अच्छी तरह किया था
है
ना।
हम ये हैं पर
हम सोच रहे थे कि हिंदी में
असली शांति चाहिए
ये ड्रामा किया जाए
क्या करना चाहिए
थोड़े महीनों के बाद श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में हम अपने थोड़े एक दो बार और प्रैक्टिस करके जिसमें
जो धर्म
सब मंदिर के लाइफ मेंबरशिप को स्पेशल इनविटेशन ले सकते हैं ना,
पर
क्या
करना
है लाइफ मेंबरशिप कन्वेंशन
के पालन से
और उनको बुलाकर पहले हम करते थे लाइफ मेंबरशिप कन्वेंशन लेकिन ड्यूर ऑन अ संडे
केवल समाज में उत्पाद होगा.
क्या विचार है?
आप देखते हो कई बार युद्ध होते हैं धर्म के कारण किसी और व्यक्ति के धर्म के व्यक्ति को हम.
सो वी वांट टू वेलकम द
क्योंकि
द डिवोटीज फ्रॉम ताइवान और चाइना.
इसी प्रकार
ऑल ऑफ यू फ्रॉम ताइवान
एक धर्म के प्रचारक हैं.
ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश.
उनका जो उपदेश है शास्त्र.
सो व्हाई डिडंट यू सिट इन द बैक ओवर देयर एंड देन यू कैन ट्रांसलेट.
हजारों हिंदू संस्थाएं हैं तो लोग मिल क्यों नहीं जाते?
या बिकॉज़ इफ यू ट्रांसलेट फ्रॉम हियर
तो कहते हैं अरे भाई इतने हिंदू संस्थाएं.
ओके व्हिचएवर वे यू वांट बट यू कैन सिट टुगेदर इन अ ग्रुप एंड
हम तो एक संदेश देने को तैयार हैं.
ताइवान से दे जस्ट केम दिस मॉर्निंग.
देने को तैयार नहीं है.
सो डू वी हैव हिंदी फैसिलिटी फॉर एवरीवन? आई मीन द ट्रांसलेशन
कॉन्फ्रेंस में जिसमें योगी भजन और कई प्रसिद्ध
श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो चैप्टर 13
प्रभुपाद जी ने कहा वी कैन हैव यूनिटी वेरी इजीली
23 एंड 24 24 इज ऑन द बोर्ड.
वन गॉड कृष्णा
ब्रह्मनाम
वन बुक भगवद गीता एक मंत्र है. तो हम एकता लाने को तैयार हैं अगर सब शास्त्र पर आधार पर भगवान का उपदेश है. अगर हम शास्त्र को स्वीकार नहीं करते अगर सब भगवत गीता को स्वीकार करें
विजो तमाम
एक प्रकार का प्रचार भाग्य भगवत गीता का
श्लोक
का उपयोग किया गया है. सातवें अध्याय का देवी से गुणम आये ताकि भगवान क्या
रमना महाशया
करना बहुत कठिन है. अगर कोई व्यक्ति जो शरणगत हो जाए तो ही
स्वागजितेन
काकुभागजितेन काकुभा
गतेश्वना यथा विभू रमना महर्षयाम आस
ब्रह्मयाम
आसोतमोतमायन का
श्लोक में केवल अगर तुम मेरे धाम मेरी शरण लोगे तो ही मेरे धाम लौटोगे.
रमना महर्षयाम आस
मेरे धाम लौटोगे तो वहाँ किसी प्रकार का जन्म मृत्यु का अनुभव
स्वागजितेन
भौतिक संसार में
प्रत्येकता विभू
एक है मुखालयम दूसरा है प्रशासन. दुखालयम का अर्थ है दुख ही दुख और अशाश्वतम का अर्थ है हर चीज जो है अस्थाई है. तो चाहे आप करोड़पति बन जाओ या अरबपति बन जाओ आप अपने आप को सात प्रकार के कष्टों से
ब्रह्मांडम हर्षयामास
कितने धनी व्यक्ति आए सबको बड़ा
हरिस्तां चादि ज्योतमान.
इसलिए भगवान कहते हैं
स्वर्गजितेन चतुभः प्रतिस्वनयता विभो
आप ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाओगे आप अपने आप को सात प्रकार के कष्टों से नहीं बचा सकते. इसलिए भगवान कहते हैं मेरे धाम देवताओं की शरण में भी मत लो. भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं कम बुद्धि के व्यक्ति कहाँ जाते हैं देवताओं के. तो वो ये भी कहते हैं कि जो वर देवताओं द्वारा प्राप्त हो रहा है वो वर कौन दे रहा हूँ वो वर केवल मैं ही दे रहा हूँ. तो इस विषय की प्रभु जी कहते हैं और आगे यही कह रहे हैं कि हम बड़े गौरव से कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं पर अगर आप क्रिश्चियन हो तो
माता जी
शिक्षा का पालन करो और जीसस क्राइस्ट ने जो 10 कमांडमेंट उनको 10 कमांडमेंट कहा जाता है. एक बड़ी प्रसिद्ध फिल्म जो बनी थी बाइबल के ऊपर जिसका नाम था द 10 कमांडमेंट. तो 10 कमांडमेंट का मतलब है जीसस क्राइस्ट ने 10 मूल नियम दिए जिनका पालन हर क्रिश्चियन को करना चाहिए. तो सबसे पहला कमांडमेंट क्या था क्या तुम किसी को मारोगे नहीं. तो बाबा जी ने एक बार क्रिश्चियंस के साथ चर्चा करते हुए ये कहा
कि अगर आप क्रिश्चियन बनना चाहते हो हमें कोई इससे ऑब्जेक्शन नहीं, कोई इतराज नहीं। तो अगर आप क्रिश्चियन बनना चाहते हो तो आप जीसस क्राइस्ट के जो 10 कमांडमेंट हैं उनका पालन करो। आप निर्दोष पशुओं पर अत्याचार करोगे तो दूसरी तरफ से कहोगे हम क्रिश्चियन हैं तो वो शोभा नहीं देता। और आगे जाकर पापा जी फिर ये गीता के सातवें अध्याय का श्लोक उपयोग करें।
ट्रांसलेशन ट्रेक्स 23 एंड
ये जो पानी में जो टेस्ट है।
व्हाइल ब्रह्मा वाज डिलिब्रेटिंग विद द सन्स द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड विष्णु रोड टमल्टुअसली like a great mountain.
Yes, it is very purple. Easy.
It appears the great hills and mountains also have the roaring power because they are also living entities. The volumes of the sound vibrated is in proportion to the size of the material body. While Brahma was guessing about the appearance of the Lord's incarnation of the boar, the Lord confirmed Brahma's contemplation.
तो आप पानी पीते हो तो पानी में टेस्ट आता है, तो भगवान क्या कहते हैं?
ब्रह्मनाम अंच ब्रह्म हर्षायाम एनलाइवेंड हरि दी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड धन ऑल ऑफ देम ऑल्सो बीजा उत्तम बीजा उत्तम हाईली एलिवेटेड ब्राह्मण
देखा जाए हम ये भी कहते
स्वागजिते बाय हिज अनकॉमन वॉइस।
दूसरे तरफ से
ककुब
हर समय भगवान
ऑल डायरेक्शन प्रतिश्वानायता
पानी का जो टेस्ट
विच एकोड
जो सूर्य चंद्रमा
वैभू दी ओमनीपोटेंट
से आप भगवान का दर्शन
दी ओमनीपोटेंट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड एनलाइवन ब्रह्म एंड द अदर हाईली एलिवेटेड ब्राह्मण बगीन रोरिंग with his uncommon voice which echoed in all directions
responsibly
the omnipotent supreme personality of Godhead alignment Brahma and other highly elevated brahmanas by again roaring with his uncommon voice which echoed in all directions. Purported by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki, Brahma and the other enlightened Brahmanas who know the Supreme Personality of Godhead are enlivened by the appearance of the Lord in any of His multi-incarnations. The appearance of the wonderful and gigantic incarnation of Vishnu as the mountain-like boar did not fill them with any kind of fear. Although the Lord's resounding voice was tumultuous and echoed horribly in all directions as an open threat to all demons who might challenge His omnipotency. Om Agyan Dimirandasya Yananjana Shalakya चक्षुर मिलितन्येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुना तन्मितं तं सजीवं सद्वेतं सवधूतं परिजना साहित्यं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं सब हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंता नाना कंता नमोस्ते Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindaveshwari Rishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Pri Vancha Kalpa Tarbhyascha Kripa Sindhu Bhivacha Paritana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
हमारे मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि हम ही भोक्ता बने
से क्लास में थोड़ी चीजें मैं हिंदी में बोलूंगा कल की क्लास में आप मैंने डिस्कस किया था
कि
यहां कल 10वीं साल के
राजा भी बन जाओ एक बड़े फिल्मी कलाकार भी बन जाओ क्रिकेट कलाकार भी बन जाओ
ब्रह्मनाम हर्षय आशर
प्रभुपाद जी हरे
तम चाद जो तमाम स्वागत तेना काकुभा
योजना
प्रदेश
तो ये संस्था क्या कर रही है ये संस्था प्रचार के माध्यम के द्वारा
इन दिस चैप्टर
ये शिक्षा दे रही है
यू आर रीडिंग अबाउट
गॉड आप भगवान
दी अपीयरेंस ऑफ
भगवान लॉर्ड को कहा जाता है
लॉर्ड लॉर्ड विशा लॉर्ड वरा You're reading about the appearance of Lord Vara. And it explained here that the omnipotent Supreme Personality of Godhead enlivened Brahma. Brahma was an anxiety. He saw that all the planets and the earth were submerged deep in water except three higher planets,
Chatur, Mahar and Jana Loka.
All the planets were deeply submerged in water. And Brahma was just meditating. How is he going to rescue these planets? And as we know, the Lord is in everyone's heart, isn't it? Ishvara Sarva Bhutanam, His Deshe Rajana Tirsati. So Brahma was just meditating. All the planets have got deeply merged deep in the water. As we said, except the three higher planets, all were in deep water. And as Brahma was contemplating how to perform this act of rescue, how to do this rescue act, the Supreme Personality of Godhead appeared from the nostril of Lord Brahma. From the nostril. So how big is somebody? You've heard about people taking birth from the womb. But here you see that the Lord appeared out of the nostril. And when He appeared out of the nostril, as you can imagine, it was no bigger than the size of a
thumb.
That's all. The tip of the tongue. That's all. And then the incarnation expanded to a wonderful manifestation as gigantic as an elephant. Then it went on expanding even further, further, till it touched the sky. And then, in order to confirm that something extraordinary has taken place, there was a loud roaring. And Prabhupada explains, even the mountains are living entities. And they also roared. So Brahma, when he saw this extraordinary manifestation, first it was the tip of the thumb, then it expanded to a gigantic elephant, then it expanded, expanded to touch the sky, and when he heard this loud roaring by the boar, then Brahma could understand what? He could understand that this must be the Supreme Personality of God. This
extraordinary activity cannot be done by an ordinary person. And then the inhabitants of the other planets, when they heard the tumultuous voice of the boar, then they could all understand that this is the Supreme Personality of Godhead. And then they all offered very wonderful prayers to glorify the Supreme Lord. Now, a modern day individual may say, this is inconceivable. How can God appear as a boar, hog, sewer? In Hindi, this is sewer. How can God appear as a hog, isn't it? But Prabhupada says in the purport, that the Lord appears in multi-incarnation. In other words, the Lord, when He appears, He performs superhuman activities and He can appear in a variety of different forms. In the first canto, you get a summary explanation of the Lord's various incarnations. And in each of these incarnations, the Lord performs an activity that cannot in any way be equal to or done by any other individual. For example, here is the Lord appears as a boar. And he appeared first the size of the tip of the thumb, and then he expanded himself, and then he roared so loudly. So this is not an ordinary person's activity. So the scriptures describe the different incarnations of the Supreme Lord. Just like yesterday, we celebrated Ram Navami. Ram Navami is still fresh in everyone's mind. Even if you analyze Lord Ram's activities, you see that he performed so many superhuman activities. These days it is very common for people to claim to be God, but they cannot perform anything superhuman. There are many detailed books on the life of Lord Ram, but in the Srimad Bhagavatam, you only get a summary presentation. And Shukadeva Goswami says that Lord Ram's activities have already been described in great detail. So I will only give a summary presentation and then only two chapters where you get exposed to Lord Ram's activities. So you don't really read about all the various pastimes. Shukadeva Goswami has only touched on few important pastimes. But you see how Lord Ram broke the bow belonging to Lord Shiva and needed to carry. And it was so heavy, he needed 300 people to break it, to carry it. How, when he wanted to cross over to the, or cross the ocean, he threw mountain peaks, stones, and these, instead of sinking, what did they do? They were just floating in water. Now this stones floating as water, it's not an inconceivable activity for the Lord. How are these different planets floating in space? Just like at any one time, you see so many planes in the sky, isn't it? At any one time, if you were to calculate, there may be over 100,000 planes in the sky just on this early planet, if you calculate the whole world. So how do these planes float in the sky? By manipulation of the air with the engines that they have. So the Lord is able to arrange for the different planets to float in space. And these, at least in the material world, when you have these planes, they sometimes crash, but the planets never collide, and never collapse. So for the Lord to do anything, it's not impossible. The Lord Ram was able to throw mountain peaks, which floated in water. Then again, his army consisted of just two individuals who had the capacity to even shoot arrows. And the others were nothing but monkeys. Still, he was victorious. So the point is, the Lord, when He appears, He performs superhuman activities, and we get exposed to the different incarnations of the Lord in the scriptures. There are six broad categories of incarnations of the Lord. We have the Purusha avatar category, Guna avatar, Leela avatar, Manmantara avatar, Shakta Vesh avatar, and Yuga avatar. These are the six broad categories of avatar. But all the incarnations of the Lord are explained in the Srimad Bhagavatam. In other words, it's only through the agency of the scriptures do we really accept who is an incarnation and who is not an incarnation. So over here we see the Lord appearing as Lord Vaha. So in the Bhagavad Gita, Krishna explains that we should always think about Him, isn't it? In the summary verse in the 18th chapter, Krishna says, Man Mana Bhava Mad Bhakto. But earlier in the 7th chapter, Krishna explains how we can think of the Lord. What are the characteristics of the Lord?
Tell them
how to think about the Lord. In this regard, Lord Brahma has stated, Advaitam, Achyutam, Anadi, Ananta, Rupa. That the Supreme Personality of Godhead is Advaita. He is Achyuta. Achyuta means infallible. And Ananta Rupa. Ananta Rupa means that He can manifest Himself in a variety of forms. So Lord can incarnate as a boar, as you read about in this chapter of the Srimad Bhagavatam. He can appear about as a fish. He can appear as a Brahmin boy. He appeared as Vamana in the sacrificial arena of Bali Maharaj. And over there,
where is he?
He again performed an inconceivable task. He spread his leg, his first footstep. He covered the whole holy planet. Bali Maharaj was so pleased by the beauty of the Brahmin boy that he offered him any benediction that he may like, and all he asked for was enough land where he could keep three footsteps. And with the first footstep, he covered the whole earthly planet. Now if you were to tell this to a modern day individual and say that the Lord with one footstep covered the whole earthly planet, would he believe it? He'll say, this is mythology. What is mythology? Mythology means nothing but imagination. Just like when the Britishers came to India, they were a little bit more sophisticated than the hardcore Mahamdan kings who came. The Mahamdan kings who came, they openly destroyed the temples. You know? Like all the temples in Vrindavan were destroyed, then all this, Vrindavan was devastated. Then the Goswamis of Vrindavan, the Goswamis went there on the order of Chaitanya Mahaprabhu, and they re-established the temples and identified the places where the Lord had performed his pastime. So the Britishers, when they saw the deep roots that the Vedic culture had on the Indian people, they had many of their scholars study Sanskrit. And after learning Sanskrit, they translated these texts. And then they support published articles to show that this is all imagination, this is all mythology, this is not possible. And hence, a lot of people started believing that this is all imagination. And even today, you meet modern-day Hindus who say, oh, God Ram never appeared.
So we respect Mirabai.
He never constructed a setu or bridge, isn't it?
Vaishnava.
He says, no, this is impossible. So the Bhagavatam says, the scriptures say, Athash Kishan Namadina Bhavet Kremindriyahi Sevo Mukehi Jiva Dhok. Unless you take to the path of devotional service, you cannot understand the inconceivable nature of the Lord. So, in the Bhagavad Gita, Krishna tells us, think of me as one who is inconceivable. Inconceivable means he is beyond the material senses. Just like when you read about Lord Vamandev, how with the first footstep he covered the whole earth, second footstep he covered everything from the earth to the sky. So for God, this is not difficult. He can do anything. Just like we discussed the appearance of Nrsingadev on May 18th. You're going to have Nrsingadev Chaturdasi. You're going to have a drama. Okay. So very next month you're going to have Lord Nrsingadev's birthday. So Lord Nrsingadev appeared what? Half-life. Lord Brahma had given various benedictions to Hiranyakashipu. I will not be killed by a human being or an animal, neither killed in the sky or on earth or in water. He extracted various assurances from Brahmaji, thinking that now he'll become deathless. And the Lord appeared as Hiranyakashipu, as Lord Nrsingadev, half man, half lion, to keep the promise of his devotee Brahma intact and to annihilate this demon. And after killing Hiranyakashipu, Prabhupada jokingly said in one lecture, Lord told Brahma, don't give such promises in future. You make my job very hard. So the point is, the Lord can appear